ओम शांति। आज स्पीच मेथड के द्वारा हम आने वाले संडे के मुरली को रिवाइज करेंगे। तो स्पीच की शुरुआत में एक प्रश्न है आप सभी से कि अभी तक हमने संगम की आदि से अब तक या हमारे जन्म के आदि से अब तक जितना भी हमने पुरुषार्थ किया, क्या हम उस पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं और आने वाले कुछ वर्षों में हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम सबको अपने आप को ही देना है। यज्ञ की शुरुआत से बाबा ने, जैसे संगम की शुरुआत हुई, तो तब से एक विचित्र अद्भुत चित्रशाला बाबा ने बनाई और इस चित्रशाला में बाबा ने हर एक बच्चे के चरित्र के चित्र लगाए। तो इस चित्र में, जैसे बाबा ने कहा है चरित्र के चित्र, तो जैसे आजकल के माता पिता जैसे घर में बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चों के हर एक एक्टिविटी जन्म से ही उसके फोटोज निकालते हैं। जैसे एक्टिविटीज होती है, जैसे बच्चा पहली बार स्माइल करता है, घुटनों पे चलता है या वॉक करता है, तो उस एक्टिविटीज के फोटोज माता पिता निकालते हैं और उसको ना यादगार के रूप में एक एल्बम बना के रखते हैं। तो वैसे ही बाबा ने भी हम सब बच्चों के चरित्र के चित्र बनाए, एक एक चित्र। अब चरित्र के आधार से एक एक चित्र बनाए, मैंने हर एक स्थिति का बाबा चित्र निकालता है, हर एक चरित्र का आधार से चित्र निकालते हैं। अब वहां तो काफी कम फोटोज होते हैं, इसलिए बाबा ने यह कहा कि चित्रशाला कितनी बड़ी है, क्योंकि एक एक आत्मा, एक एक बच्चे की जो चित्र है वो कितने अनेक है, क्योंकि हमारी स्थिति हर सेकंड में ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस चित्रशाला में अनेक बाबा ने फोटोज लगाए। फिर बाबा ने आगे कहा कि जैसे डॉक्टर नब्ज देखकर तंदुरुस्ती का पता करते हैं, है ना, कि नब्ज देकर गति का पता करते कि नब्ज कैसी चल रही है, उसके आधार से तंदुरुस्ती का पता चलता है। तो वैसे ही बाबा यह चित्र देखकर बच्चों की लाइट की गति का अंदाजा लगाते हैं। तो यहां भी बाबा हर एक की लाइट को देख रहे हैं कि लाइट की गति कैसी है, ऊपर नीचे होती है या, और उसका कलर एक समान रहता है। तीसरा था रुक रुक के चलती है या एक समान चलती है। तो इस तरह गति का भी पता लगाते हैं। अच्छा, इसमें एक बात बोलना भूल गया, पहले बाबा तीन विशेषताएं भी देखते हैं। तो वो पहली विशेषता जो है वो चित्र के आधार से पवित्रता की पर्सनैलिटी, और दूसरा है रियलिटी की रॉयल्टी, और तीसरा संबंध की समीपता। ऐसे बाबा छह बातें देखते हैं। अब इसमें भी बाबा ने कहा कि ये विशेषताएं बाबा देखते हैं तो इस विशेषताओं में भी अंतर आ जाता है, माना परसेंटेज। जैसे सभी की एक जैसी स्थिति, एक जैसी विशेषता एक जैसी नहीं होती है। पवित्रता की जो बाबा ने कही, जैसे इसमें इसी मुरली में कहा कि बच्चों के किसी किसी की जो पवित्रता का जो लाइट है वो सिर्फ फेस तक, जैसे ताज होता है ना फेस तक, वैसे ही फेस तक नजर आ रहा था, किसी का आधे शरीर तक और किसी का पूरे शरीर तक इसकी लाइट नजर आ रही थी। उसी प्रकार बाबा ने कहा रियलिटी की रॉयल्टी में हर्षित मुक्ता और स्वच्छ था। तो हर्षित मुक्ता कभी कभी तो हर्षित रहते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, वही स्वच्छ, कभी स्वच्छता कभी अस्वच्छता। फिर संबंध की समीपता में बाबा ने कहा कि जैसे संबंध की समीपता में बाबा ने कहा कि जैसे उनकी लाइट का जो किरणें हैं वो थोड़ी थोड़ी, किसी की थोड़ी थोड़ी फैल रही थी, किसी की थोड़ी ज्यादा थी, और किसी की बाप समान, अर्थात बाप समान चारों ओर फैल रही थी। तो इस प्रकार विशेषता में भी परसेंटेज नजर आ रही थी। फिर बाबा ने आगे सच्चा सच्चा वैष्णव और बाल ब्रह्मचारी, इसकी बाबा ने इसकी विशेष, इसकी एक परिभाषा बताई कि सच्चा वैष्णव किसे कहेंगे और बाल ब्रह्मचारी किसे कहेंगे। तो इसमें बाबा ने कहा कि जो बच्चे स्वयं के प्रति या किसी और के प्रति भी अगर एक व्यर्थ रूपी संकल्प, एक व्यर्थ संकल्प रूपी अपवित्रता भी अगर है तो वो सच्चा वैष्णव या बाल ब्रह्मचारी नहीं है। जिसका जन्म से ही एक भी संकल्प व्यर्थ ना चला हो, अपवित्र संकल्प ना चला हो, तो वो आत्मा ही सच्चे सच्चे बाल ब्रह्मचारी है या सच्चा वैष्णव है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि जैसे मैं चित्र को देखकर, हर एक के चित्र को देखकर देखता हूं कि बच्चों की लाइट कैसी है, गति कैसी है, तो उसी प्रकार क्या आप अपने चित्र को देख सकते हो? तो बाबा ने कहा, नॉलेज के दर्पण के आधार से आप स्वयं के चित्र को देखो। तो इस प्रकार ये स्पीच थी। ओम शांति।
ओम शांति। मेरे को मतलब जो काम मिला था वो सोमान लिखने थे मेरे को, तो इसमें जैसे 10 सोमान थे तो उसमें मैंने मतलब वो सोमान भी लिखे हैं जो मेरे को ज्यादा फील होते हैं, और मुरली में से भी मैंने जो लिखा उसको, उसके ऊपर भी मैंने अभ्यास करने की कोशिश की है। कि जैसे पहला सोमान है कि मैं गॉडली मैसेंजर हूं, और जैसे 10 सोमान है मैं रूहानी सोशल वर्कर हूं, और एक मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था कि तुम मस्त मतलब अपना जो है वो मस्त उसमें रहा करो, तो उसमें से था, हाँ मस्ती में, ज्ञान की मस्ती में, तो उससे था कि मैं रमता जोगी हूं। उसके बाद मैं कल्प की विजयी रत्न हूं, और उससे अगला सोमान है कि मैं जागती ज्योत हूं, कि मुरली में था कि आप हमेशा जागते रहो, कि दीपावली के ऊपर भी था ना कि जागती ज्योत आपको हमेशा, जो दीपावली में दिया जलता रहता है उसी तरह। और बाबा ने कहा था कि जैसे अवतारी आत्मा, जैसे अवतारी हम ऊपर से उतर के आए हैं, तो फिर उसमें मैंने लिखा कि मैं प्रिंसिपल एक्टर हूं। और उसके बाद मैंने अगला सम्मान है कि मैं ब्लिसफुल आत्मा हूं। उससे अगला है कि मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूं, कि जैसे बाबा ने बताया था ना कि कर्मों से आपको, कर्मों में आपको बंधना नहीं है। फिर उसके बाद है कि मैं गुणग्राही आत्मा हूं, यानी मेरे को गुण ही देखने हैं दूसरे में, और वैसे तो नेगेटिविटी तो एक सेकंड में हमें दिख जाती है, लेकिन अगर गुण देखने की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं तो वही गुणग्राही आत्मा। और मैं रहमदिल आत्मा हूं नेक्स्ट है, उससे नेक्स्ट है मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति।
ओम शांति। जो कल मुरली चलने वाली है 26/2/84 की बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला, उसमें सेल्फ चेकिंग के पॉइंट्स बोले थे निकालने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स निकाला है बाप दादा ने, जैसे इस मुरली में कहा कि बाबा जो है बच्चों की चित्र को देख रहे थे, तो बाबा ने इसमें तीन चीजें बताई है। जो सबसे पहला बताया प्योरिटी की पर्सनालिटी, दूसरी रियलिटी की रॉयल्टी, और तीसरी जो है संबंधों की समानता, समीपता। तो इसमें ये तीन पॉइंट तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा जो सेल्फ चेकिंग का पॉइंट जो निकाला हुआ है कि जैसे बाबा ने कहा कि बच्चों की चित्रशाला बाप देख रहे थे, तो चित्रशाला माना सवेरे से लेके रात तक हमारा चित्र, माना हमारा फेस कौन से रूप में बाबा देखते हैं, वो सेल्फ चेकिंग का पॉइंट है। कि हम जब अमृत वेले बैठते हैं उस समय हमारा चित्र कैसा होता है, और जब हम दिन में सेवा में आते हैं उस समय हमारा चित्र कैसा होता है। कोई अगर हमारे अच्छा पहचान वाला, कोई गांव वाला स्टेट वाला आ गया, तब हमारा चित्र कैसा होता है, और कोई ऐसी आत्मा आ गई जिसके लिए हम खास योग कर रहे हैं, जिसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, उस समय हमारा चित्र कैसा होता है। तो ये अलग अलग चित्र हम दिन भर में चेक कर सकते हैं, हमारा फेस जो है पोज हम देख सकते हैं कि सवेरे अमृत वेले के समय जितनी हमारे अंदर शुभ भावना भरी हुई है, वही शुभ भावना दिन भर हमारे अंदर रहती है, समय के अनुसार हमारा फेस जो है, हमारा चित्र जो है चेंज होते रहता है। जैसे बाबा के पास चित्रशाला अलग अलग है ना, मतलब अलग अलग चित्र बाबा देखते होंगे। सवेरे यही बच्चा योग में बैठा है तो एकदम तपस्वी मुहूर्त होकर बैठा है, और जब दिन में सेवा में आते हैं या कोई परिस्थिति आती है तो उस समय हमारा चेहरा या फेस चित्र कैसे हो जाता है। तो ये फर्स्ट था सेल्फ चेकिंग का पॉइंट कि दिन भर हमारा चित्र यानी हमारा फेस चेहरा कैसा कैसा होता है, हमारी स्थिति कैसे कैसे होती है। सेकेंड जो पॉइंट निकाला है सेल्फ चेकिंग का, इसमें जैसे बाबा ने कहा कि हर एक की प्योरिटी की जो है पर्सनालिटी, उसका जो बाबा ने कहा कि लाइट जो है किसी का केवल ताज के समान ही था, मतलब फेस के आसपास ही था, किसका आधे शरीर तक था और किसका पूरे शरीर तक था, पूरे शरीर में फैला हुआ था। तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारा लाइट जो है, हमारी प्यूरिटी की लाइट कहाँ तक फैली हुई है, या हम कितना दूर तक उसे फैला सकते हैं या फैला रहे हैं। जैसे मैं जब योग करता हूँ तो उसमें खास ये करता हूँ कि पूरे बॉडी में जो है बाबा से लाइट लेकर सर से लेकर पैर तक पूरे बॉडी में फैली हुई है, और वही लाइट जो है, वही ओरा जो है, हम चारों तरफ फैला रहे हैं, चाहे हम प्रकृति में फैला या आसपास के वायुमंडल में आसपास की जो भी आत्माएं हैं, कहां तक हम ये पावरफुल, मतलब जो ओरा जिसे कहते हैं, वो कितना पावरफुल हम बना रहे हैं या कितना चारों तरफ हम फैला रहे हैं। तो यह सेल्फ चेकिंग का पॉइंट है कि हमारी प्योरिटी की जो लाइट है या जो भी वाइब्रेशन हमारे से निकल रहे हैं, वो हम कितना दूर तक फैला रहे हैं उसको, ये पॉइंट है। सेकंड जो थर्ड जो बाबा ने इसमें कहा मुरली में कि मिलने वालों की लिस्ट जो लाइन जो है लंबी है, तो बाबा ने कहा कि अव्यक्त वतन में जो है न वहाँ कोई टाइम है, न कोई वहाँ नंबर लेना पड़ेगा, वहाँ एक साथ में जितने लोग चाहे और जितने देर चाहे जब चाहे मिल सकते हैं। तो हम नॉर्मली अमृत वेले योग के बाद में जब ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह होता है उस समय तो बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाकी का समय हम कितना समय अव्यक्त वतन में जाकर बाबा से मिलते हैं। जैसे भी लास्ट दो मुरलियां जो चली हैं रिवाइज अभी अव्यक्त सीजन की, उसमें बाबा ने कहा कि बीच बीच में ड्रिल करो, तो हम वो ड्रिल तो करते हैं, जैसे एक एक घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, 10:30 का हो गया, 12 का हो गया, लेकिन उसके अलावा हम अपना खुद का ट्रैफिक कंट्रोल कितना करते हैं, बीच बीच में कितना समय बाबा के पास जाके अव्यक्त वतन में हम मिलते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है सेल्फ चेकिंग की। इसमें चौथा जो पॉइंट बाबा यूके ग्रुप के साथ मिल रहे हैं, उसमें बाबा ने कहा कि जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो फाउंडेशन जो है छिप जाता है, तो हम दूसरों को आगे, हमें चांस देना है, दूसरों को चांस देना है, जो दूसरों को आगे करते हैं वो स्वयं आगे होते हैं, तो हम दूसरों को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। अंदर हमारे मन में ये फीलिंग तो नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं, केवल बाहर दिखाने के लिए लोगों को कह रहे हैं कि हम दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर वो भावना कितनी है कि हम कितना दूसरों को, सचमुच हमारे अंदर ये है। एक कई बार ऐसे होता है कि हम किसी को आगे बढ़ा तो देते हैं कि हमको कोई सेवा नहीं आ रही है, कोई कुछ भी है, लेकिन बाद में उस व्यक्ति को ज्यादा नाम मान शान मिलने लगता है, तो हमारे मन में ये होता है कि ये सेवा उससे वापिस ले ले, या मतलब ये क्यों मैंने दिया उसको, उसके देखो उसकी वजह से इसका नाम मान हो रहा है, मैं तो पीछे ही रह गया कैसे। तो ये भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, या कितना सचमुच ये भावना हमारे अंदर है कि हम कितना सामने वाले को शुभ भावना से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि हम कितना दूसरों को चांस देते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट बाबा ने हॉलैंड ग्रुप में से मिल रहे हैं, तो उसमें बाबा ने कहा कि तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो स्नान करते हैं और कोई कमजोरी छोड़ते हैं, कमजोरी का दान देते हैं, तो जिस बात में आप परेशान होते हो उसी बात को छोड़ना है। तो हमें ये चेक करना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें हम परेशान होते हैं, चाहे वो संबंध संपर्क की बातें हैं, सेवा की बातें या कोई भी बात है, किस बात में हम परेशान होते हैं, कौन सी बात जो है हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमारे मन को डिस्टर्ब करती है, तो उस बात को हमें छोड़ना है, उस बात के ऊपर ध्यान देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सेल्फ चेकिंग का पॉइंट है, बाबा ने कहा है कि जो ब्राह्मण धर्म एक है उसमें देशी विदेशी नहीं होते, ये इस धर्म का है, इस धर्म का है, हम इंडियन है, हम विदेशी है, तो वो बात उसमें नहीं होनी चाहिए। तो वैसे इंडियंस और विदेशी में तो ये बात वैसे होती नहीं है, लेकिन हमारे आपस में ये बातें बहुत सारी होती है कि ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, वो वहाँ का है, ये हमारे देश का है, वो हमारे गांव वाला है ना। जैसे बताया कि अपने पास वाला जो हम जिसको जानते पहचानते हैं, या हमारे गांव वाला है, कोई संपर्क नजदीक वाला है, तो वो आते ही हमारा चेहरा या हमारा हाव भाव एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं, और वही कहीं दूसरा व्यक्ति हो तो उस समय हमारे एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। तो सभी ब्राह्मण एक ही है, इसमें कोई अलग अलग नहीं, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे कोई भी हो। तो ये हमारे अंदर भावना कितनी है कि हम सब ब्राह्मण एक है। बाबा ने कहा ना कि सब एक के हैं और एक ही के हैं, बाप एक है और सब एक ही के हैं। इसमें जो लास्ट पॉइंट जो इसमें बाबा ने कहा है कि यज्ञ सेवा, तो यज्ञ सेवा हमको जो भी सेवा मिलती है, बाबा ने कहा चाहे भाषण नहीं करो, चाहे कोर्स नहीं कराओ, लेकिन सेवा का मार्क्स जमा होता है। तो हमें जो भी सेवा दी हुई है यज्ञ से या सेंटर पे, हम जो भी सेवा करते हैं तो हम कितना दिल से वो सेवा करते हैं, क्या हमारे मन में ये भावना तो नहीं आती कि देखो मुझे यही सेवा दी है और उसको वो सेवा दी है, उसका ज्यादा नाम मान हो रहा है, उसको ज्यादा लोग जानते पहचानते हैं, उसको ज्यादा इज्जत मिल रही है, और मुझे तो कोई जानता पहचानता नहीं है, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है, हमारे अंदर ये भावना तो नहीं है। तो जिस किसी को जो भी सेवा दी हुई है वो बाबा ने सेवा दी है। जैसे बाबा ने कई बार कहा है कि यज्ञ का जो मैनेजर है बाबा है, जैसे कोई कंपनी होती है, मैनेजर होता है, तो उस मैनेजर को पता होता है कि किस पोस्ट के लिए, किस सेवा के लिए, किस जॉब के लिए कौन सा व्यक्ति सुटेबल है, वो उसी व्यक्ति को वहां पर रखता है। अगर कई बार आगे पीछे होता भी तो उसे बाद में चेंज करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इस यज्ञ का जो मैनेजर बाबा है, तो बाबा को अच्छे से पता है कि किसे कौन सी सेवा देनी है और कौन कौन सी सेवा के लिए फिट बैठता है। तो हमारे मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए सेवा करते समय कि इससे ज्यादा नाम मान मिल रहा है और मुझे ये सेवा क्यों दी हुई है। तो ये सेल्फ चेकिंग के 7 पॉइंट्स हैं। ओम शांति। सबसे पहला जो पॉइंट बताया, अलग अलग फेस जो है, हम दिन भर में कौन से फेस हमारे होते हैं। सेकंड जो है, प्यूरिटी की पर्सनालिटी की जो लाइट है, तो लाइट हमारे पूरे बॉडी में फैल रही है, केवल फेस में ही है कहां तक लाइट फैल रही है। तीसरा जो इसमें बताया कि दूसरों को, जैसे बाबा ने कहा, सॉरी तीसरा जो था अव्यक्त वतन में हम बाबा से कितने समय मिलते हैं दिन भर में। चौथा जो था, हम कितना दूसरों को चांस देकर आगे बढ़ाते हैं। पांचवा जो था, बाबा ने कहा कि अगर कोई कमजोरी है, जिस बात में परेशान होते हो, उस बात को छोड़ दो तो महान आत्मा बन जाएंगे। छठवा जो इसमें बताया था पॉइंट, बाबा ने कहा कि सब ब्राह्मण एक ही है, अलग अलग धर्म के नहीं, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, सब एक ही हैं। और सातवा जो था, यज्ञ सेवा के बारे में बताया था। ओम शांति।
ओम शांति। बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला, तो इसमें मुझे मिला था कैची वर्जन, पावरफुल पॉइंट। तो इस मुरली में, हाँ, तो नशे वाली पॉइंट, इंटॉक्सिकेशन, तो इसमें बाबा ने सेवा के बारे में भी बहुत डायरेक्शन दी हुई है। तो माताओं से बाप दादा बात कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि आप खुशी में नाचते रहो, खुशी हो तो आप सेवा बहुत अच्छी होगी। तो इसमें बाबा ने कहा कि यज्ञ सेवा का जो भाग्य मिलना, ये बहुत बड़ी भाग्य की निशानी है। स्वयं भाग्य विधाता क्या कर रहा है, जिसने हमें यह भाग्य दिया है, वही हमारी भाग्य की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा हमें उस भाग्य का इम्पोर्टेंस, जो हम भूल जाते हैं, वो याद दिला रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ टीचर्स के साथ बाबा मिल रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि योग युक्त और युक्ति युक्त, तो बाबा ने कहा कि बैलेंस रखो, योग युक्त युक्ति युक्त। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि बैलेंस कौन सा चाहिए, कि टीचर्स के लिए बाबा ने कहा कि हम जो करेंगे वो हमें देख के स्टूडेंट भी फॉलो करेंगे, तो इसमें शब्द कौन से नहीं होने चाहिए टीचर्स के, जो मेरा नेचर, ये सब और भी कुछ बातें हैं, धर्म की भी बात है वहां पर, तो मेरे बोल कैसे हो, उसके ऊपर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। फिर तीसरा है कि ब्राह्मण जन्म, जब ब्राह्मण जन्म हुआ तो ब्राह्मण जन्म से ही कौन हुए, कि यहाँ पर एक धर्म के, ऐसा न कहना ही नहीं चाहिए कि हम कौन से धर्म के हैं, या कभी कभी पूछ लेते हैं आपका लौकिक धर्म क्या है, तो बाबा ने कहा कि वो लौकिक की बातें यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं है, धर्म है, भाषा है, हम सब का धर्म यहाँ कौन सा धर्म है, ब्राह्मण धर्म, और हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी। हाँ, तो यहाँ पर बाबा ने हम सब एक कैसे है इस बात को एक्सप्लेन किया है। फिर आगे पोलन ग्रुप है, तो बाबा ने इस मधुबन तीर्थ, महान तीर्थ की बाबा ने महिमा की है, कि यहाँ पर क्या करो, आप ज्ञान स्नान करो, और क्या करो, और क्या करते हैं तीर्थ स्थानों पर, दान करते हैं, तो कौन सा दान करना है, कमजोरियों का दान बाबा ने कहा करो, क्योंकि बुराई छोड़नी है, अच्छाई धारण करनी है, अवगुणों का त्याग कर गुणों को धारण करना है, तो इससे क्या होगा, इस तीर्थ पर आने का जो है, इस हमारा सफल हो जाएगा। फिर अगला है मलेशिया और सिंगापुर ग्रुप से, तो बाबा ने कहा कि संकल्प में कैसे दृढ़ता हो, संकल्प ऐसे पक्का करो, संकल्प में ऐसी हिम्मत हो जो आप सामने वालों को क्या कर सको, क्या समझाएंगे, परमात्म प्रेम, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएंगे, तो वो आपे ही खींच कर आएंगे। तो बाबा ने कहा उनको आप राजयोग सिखाओ, उनको डीटी देवी दुनिया के बारे में नहीं बताओ। ये बाबा चाइना की बात कर रहे थे कि वहां जाके नए स्थान पर उस स्थान के सरकमस्टांस जो है, वहां कौन सा बैकग्राउंड है, उस हिसाब से बाबा ये बात बता रहे हैं कि आप उनको पहले राजयोग सिखाओ, शिव बाबा से उनका कनेक्शन जोड़ो, बाकी आगे की बातें मैं देख लूं। फिर अगला पॉइंट है कि सदा एक बाप दूसरा न कोई। सदा एक बाप दूसरा न कोई, तो अगर दूसरा होता है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाते हैं? हाँ, डगमग हो जाते हैं, और तीसरी आंख बंद हो जाती है मुरली में। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित रहते हो क्या, बाबा ने प्रश्न पूछा। और इस स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है, क्योंकि जहां एक है वहां एक रस है और अनेक है तो स्थिति भी डगमग हो जाती है। फिर यूके के ग्रुप से बाबा ने कहा कि दूसरों को आगे रखना है, माना दूसरों को आगे रखना ही खुद जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं, वो इसकी निशानी है। तो वो तो छोटों को रखना है ना, बड़ों को नहीं। नहीं नहीं, नहीं। हाँ, जैसे कि आज के वरदान में कहा है कि आप ऐसे अनुभवी बनो, शरीर की एज की बात नहीं है, भले आप छोटे भी क्यों न हो तो भी आपको बुजुर्ग बनना है, और सामने वाला कितना भी बुजुर्ग क्यों न हो उसको बच्चे के रूप में देखो, उसको उसकी कमी कमजोरियों को संभालो। तो अगला ही पॉइंट है, अभी ये हुआ छोटों के प्रति कि छोटों को आगे रखो, लेकिन बड़े अभी बाबा ने कहा कि क्या करो आप, जो निमित्त है उनको क्या करो, रिगार्ड और रिस्पेक्ट दो। तो ये क्या है, जैसे कि शिव बाबा से हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, क्योंकि जो भी है निमित्त उनको बाबा ने कहा कि दिल से क्या करो आप, रिगार्ड रिस्पेक्ट दो। फिर लास्ट पॉइंट है निर्बंधन का, कि निर्बंधन को भी बंधन में बंधना पड़ता है। तो बाबा देखो अपनी बात बता रहा है कि मुझे भी बंधना पड़ता है, क्यों? यहाँ पर बाबा ने समय की बात बताई मिलन की, कि साकार में तो देखो लंबी लाइन लगती है बाबा के सामने, तो कितना टाइम देना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ऐसे करो कि आप सब अव्यक्त वतनवासी बन जाओ, वहां आ जाओ, तो वहां लाइन भी नहीं है, किसी को नंबर में खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं, और जितना समय चाहो उतना समय आप बाबा से मिलन मना सकते।
ओम शांति। कल की जो मुरली चलने वाली है उसके ऊपर मेरे को होमवर्क मिला है, एग्जाम्पल मेथड। तो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल है कि जैसे डॉक्टर ने वैद्य लोग नब्जा देखते तो नब्जा देखने से ही पूरे शरीर की तंदुरुस्ती का पता चल जाता है, नाड़ी नब्ज पल्स। तो कोई एक्सपर्ट जो होते हैं वैद्य, तो तीन उंगली रखते हैं नाड़ी में, तो उसमें वात पित्त कप का पता लगा लेते हैं शरीर में। उसी प्रकार बाप दादा तीन प्रकार की लाइट देख रहे हैं बच्चों की। तो बाप दादा पूरे एक्सपर्ट है इस बात में कि बच्चों की स्थिति कहाँ कितनी कभी ऊंची कभी नीची होती है, तो ये पता लगा लेते हैं। तो इसको देखने के लिए उन्होंने एक चित्रशाला बनाई है बाप दादा ने, जिसको आर्ट गैलरी भी कह सकते चित्र संग्रहालय, हाँ आर्ट म्यूजियम, अलग अलग नाम है। तो उसमें बाप दादा सबका लाइन से खड़ा करके तो एक तो सभी की जो लाइट है एक जैसी नहीं है, तो जो कोई अच्छे जो बच्चे मतलब अच्छे बच्चे या पुरुषार्थी अच्छे, उनकी लाइट एकदम सीधी जलती है और एक ही मतलब एक रस अवस्था जैसी बोलते हैं कि ऊपर नीचे नहीं होती, एक गति में वो लाइट जलती है। और दूसरी जो बच्चे है उनकी हाँ तो उनकी कलर कम ज्यादा होता है। हाँ जैसे दिवाली में जो हम लाइट देख रहे हैं तीन प्रकार की, कोई रुक के चल रही है, कोई कम ज्यादा हो रही है कलर दे रही है इसी प्रकार, और तीसरी है तो कोई किसी की लाइट रुक रही है और किसी की चलती है। तो ये देखा तो इसमें तीन प्रकार के जो बच्चे बाबा ने इस मुरली में वर्णन किया तो प्यूरिटी के पर्सनालिटी वाले, तो इनका जो बाबा दादा ने जो ओरा देखा, शरीर के चारों तरफ लाइट का ओरा था, एकदम चमक रहा है। और दूसरा जो बच्चे देखे रियलिटी के रॉयल्टी वाले, तो इनके जो चेहरा है फेस है एकदम हर्षित मुक्ता और स्वच्छता से दिखाई दे रहा है, हर्षित मुक्ता। और तीसरे प्रकार के बच्चे देखे थे कि संबंधों में समीपता रखने वाले, तो इनके जो मस्तक से सितारा चमकता है और सितारों की किरणें भी दूर दूर तक जाती है चारों ओर। और दो दूसरे हैं कि किसी के कम है, कोई कम वाले कोई ज्यादा वाले, तो इसमें तो ये स्थिति बाप दादा वो चित्रशाला में चेक कर रहे थे लाइट के माध्यम से। तो इसमें बाप दादा ने देखा कि ये जो बच्चे एकदम वैष्णव है, पूर्ण वैष्णव है, जो जब से ज्ञान मिला जन्मते ही अपने जो शुद्ध संकल्प है आदि से अंत तक मतलब अभी तक, तो जिन्होंने मतलब ब्रह्मचर्य रूप से ये जीवन जो भी बाप दादा की श्रीमत है श्रीमत पर चले, तो उनकी जो लाइट है पूरी दिखाई दे रही है पूरे शरीर में चारों तरफ। और किसी का फिर थोड़ा चेहरे तक ही सीमित है लाइट, और किसी का पूरे आधे शरीर तक, जिसका दूसरा उदाहरण है एग्जाम्पल का जैसे फोटो खींचते हैं, तो एक हाफ फोटो एक फुल, तो फुल फोटो में वो ओरा फुल दिखाई देगा और हाफ में हाफ। तो इस प्रकार से बाप दादा ने एग्जाम्पल दिए। और तीसरा यूके ग्रुप से बोला है कि वृक्ष हो, ये फाउंडेशन वृक्ष हो, हाँ फाउंडेशन वृक्ष की, जैसे वृक्ष गुप्त रहता है, नहीं फाउंडेशन गुप्त रहता है और शाखाएं आगे होती है, तो ऐसे सारे विश्व का जो विदेशी योग के लिए जो फाउंडेशन है ये लंदन है यूके ग्रुप है। अच्छा ओम शांति।
ओम शांति। रूहानी चित्रशाला का पॉइंट सभी ने बहुत अच्छी तरह आप लोग के सामने अंकन कर दिया, लेकिन गीत के माध्यम में क्या बोलूं, मेरे तो जीवन में पहले ही स्कूल में जब गया था ये गीत का जो वर्डिंग है ना उसको कैसे उच्चारण करना होता है वो गीतकारी जानता है। मधुबन में भी एक हमारे मधुरवाणी ग्रुप है, वो लोग रचना करते हैं और गाते भी रहते हैं। आज ऐसा एक मोहब्बत में पड़ गया नहीं वैसे कभी गीत गाया नहीं, बनाया भी नहीं, एक दो बार यहाँ कविता लिखा था, तो साथ में आप सभी भी गाएंगे, देखता हूँ क्या होता है। ओम शांति। क्या गाएंगे क्या सुनाएंगे आज इसी महफिल में क्या गाएंगे क्या सुनाएंगे आज इसी महफिल में बाबा के आशियान में जो रूहानी चित्रशाला है कैसे करे वर्णन पवित्रता की पर्सनलिटी कैसे करे कीर्तन आपकी महिमा जो बाप समान दिखाई दे रहे हैं क्या गाएंगे क्या सुनाएंगे आज इस महफिल में, कैसे करे वर्णन रियलिटी की रियलिटी जिनका हर्षित मुख चमक रहा है, कैसे करे कीर्तन स्वच्छता की चमक जो चारों ओर फैल रहा है। क्या गाएंगे क्या सुनाएंगे आज इस महफिल में। पसंद आ रहे? कैसे करे वर्णन संबंध की समीपता जो मस्तक के बीच चमक रहा है, कैसे करे कीर्तन आपकी चमक जो चारों ओर फैल रहा है। क्या गाएंगे क्या सुनाएंगे आज इसी महफिल में, कैसे करे वर्णन तीनों इकट्ठा पर्सनैलिटी रूहानी और समीपता, कैसे करे कीर्तन उन आत्माओं की जिनका कायम है आदि से अब तक का, कैसे करे महिमा उन आत्माओं की जिनका महिमा स्वयं भगवान गा रहा है। क्या गाएंगे क्या सुनाएंगे, सभी बोलिए क्या गाएंगे क्या सुनाएंगे आज इसी महफिल में। क्या सुनाएंगे आज इसी महफिल में। अच्छा, ओम शांति सब।
ओम शांति। तो मुरली के सभी पॉइंट्स आ गए हैं, लेकिन हमें मिला था कि ड्राइंग मेथड, तो इसमें 5-6 ड्राइंग बनाया है, तो छह में इसमें सबसे पहले बाबा ने याद किया चित्रशाला को, तो एक चित्रशाला बनाया है। इस चित्रशाला का, बाबा के जो चित्रशाला है उस चित्रशाला का नाम है डिवाइन चित्रशाला। इस डिवाइन चित्रशाला का जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, बनाने वाला है, वो बाबा है। और बाबा आज अपने चित्रशाला में चित्र देख रहे हैं। उनका चित्रशाला जो है ना, बहुत बड़ा चित्रशाला है, और चित्र जो देख रहे हैं, क्या चित्र देख रहे हैं, तो चरित्र का चित्र देख रहे हैं। चरित्र के चित्र में तीन बातें देखी और तीन गति देखा। तो तीन बातें और तीन गति तो आपने सुन ली है, फिर भी हम रिवाइज करते हैं उसको। एक तो देखा कि रियलिटी की रॉयल्टी, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, और दूसरा तीसरा कौन सा देखा, संबंधों की समीपता। तो उसमें बाबा सब अच्छा ही देखा इनमें। और गति कौन कौन सा देखा बाबा ने, एक तो गति थी जो एक समान चलने वाली थी, दूसरी गति थी धीमी चलती थी और कलर चेंज होता था, और तीसरी गति थी कभी चलती थी कभी रुकती थी। तो ये था डिवाइन चित्रशाला में जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट है और इस चित्रशाला के जो मालिक है, जो ओनर है, वो देखा इस चित्रशाला में। दूसरा जो चित्र है इसमें देखा सच्चा बाल ब्रह्मचारी वैष्णव। दुनिया में कहा जाता है वैष्णव अर्थात नौ इंद्रिय को जो अपने वश में करते, पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रिय में, एक मल द्वार को छोड़ करके जो नौ इंद्रियों को अपने वश में करते उसे वैष्णव कहा जाता है। तो यहाँ पे बाबा ने बताया है कि जो सच्चे वैष्णव होते हैं वो जन्म से ही, ब्राह्मण जन्म लेते ही तब से अशुद्ध संकल्प, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध वृत्ति उनके मन में, व्यवहार में भी, कर्म में भी नहीं आएगा तो मन में भी नहीं आएगा। तो ये निशानी देह जो बाबा से शक्ति लिया है, राजयोगी जीवन जिया है, ये कुछ महान विभूतियां हमारे यज्ञ के है, जिन्होंने यज्ञ में इतना सेवा किया, इतनी तपस्या की, इतनी सब कुछ किया जो उन्हें व्यर्थ संकल्प करने की फुर्सत ही नहीं मिला। तीसरा है इसमें, दो हो गया, तीसरा है इसमें कि बाबा से जब बच्चे मिलने आते हैं मधुबन में, चाहे हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, चाहे मेडिटेशन हॉल में, चाहे बाबा के कमरा में, चाहे ओम शांति भवन में, चाहे डायमंड हॉल में, तो यहाँ पे मिलने वाले की लाइन बहुत लंबी होती है। और लाइन लंबी होने के कारण, साकार दुनिया होने के कारण, निर्बंधन भी क्या जाता है तो बंधन में बन जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वतन में आप आ जाओ तो ना वहां पे लाइन में नंबर लेने की भी जरूरत है, तो लाइन में लगने की जरूरत है, तो वेट करने की भी जरूरत नहीं है, जितना समय चाहे आप उतना समय मिलन मना सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि निमित्त जो टीचर्सों का जो निमित्त है कौन है? हमारे दादी रतन मोहिनी जी। तो बाबा ने बताया है कि निमित्त को अपने को रिगार्ड देना है। निमित्त को रिगार्ड देना देना अर्थात क्या है? तो निमित्त को रिगार्ड देने में ही हमारी सफलता समाई हुई है। सफलता समाई और निमित्त को रिगार्ड देना अर्थात बाप को रिगार्ड देना, निमित्त को रिगार्ड देना अर्थात बाप से दिल का स्नेह लेना। इसके बाद में ये विदेशी का है, बाबा ने जो हांगकांग वाला को शायद बोले ना कि पोलैंड और मलेशिया को बोला कि वहां पे चाइना में जाके सेवा केंद्र खोलो। तो सेवा केंद्र खोलो तो ये सेवा केंद्र है योग केंद्र, और योग केंद्र खोलेंगे सेवा केंद्र खोलेंगे उनको मना देवता बनना है ये नहीं बताना है वहां के कल्चर के हिसाब से। अगर देवता बोलेंगे तो फिर सेवा जल्दी नहीं हो पाएगी, उसकी जिम्मेवार बाबा है। बाबा बोलते कि वहां के जो लोग हैं आत्माएं हो सच्चे शांति सच्चे प्रेम सच्चे सुख के प्यासे हैं, उस प्यास को अगर आप योग केंद्र सेवा केंद्र खोल के अगर आप उनको प्यास बुझा देते हो तो जन्म जन्मांतर के लिए वो गुण गाते रहेंगे। यूके ग्रुप से जो बाबा मिल रहे हैं वहां पे ब्रिक्स को याद किया है कि यूके जो है ना विदेश सेवा के फाउंडेशन स्टोन है, फाउंडेशन है। और बाबा ने यह बताया है कि ब्रिक्स की जब विस्तार हो जाती है तो ब्रिक्स का जो फाउंडेशन है वो छिप जाता है, और जब छिप जाता है तो विस्तार की अलग विशेषता है तो फाउंडेशन की अलग विशेषता है। तो फाउंडेशन को हमेशा ये सोचना है कि हमें जितना भी ब्रिक्स विस्तार हो उसमें खुशी होनी चाहिए और उसकी महत्व कम नहीं होती है, ये बाबा ने इसमें बताया है। तो बहुत अच्छा ब्रिक्स है आम का और इसके जड़े नहीं दिखाई दे रही, मिट्टी है इसे ढका हुआ है, एकदम आम लगा हुआ है, अगर चाहे तो तोड़ भी सकते हैं। ये जो है ना बाबा ने महान तीर्थ को याद किया है, तो महान तीर्थ कौन सा है? आबू। तो आबू और आबू में भी सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तो मधुबन है। तो मधुबन में ही क्या है, तो चार धाम भी है, स्वयं परमात्मा भी आते हैं। परमात्मा का अर्थ अवतरण भूमि है, कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है, तपस्या भूमि है, मनुष्य को देवता बनाने की भूमि है। तो यहाँ पे दादियां भी मिलती है। तो इस भूमि में जब स्नान करते हैं तो क्या होता है, तो हमारी कमी कमजोरी धुल जाती है और गुण अपने आप आ जाता है। तो ये थी हमारे ड्रॉइंग मेथड। ओम शांति।
ओम शांति। ये जो गीत है इसमें कुछ पैरे हैं, एक बच्चे की भावनाएं हैं इसमें। जब वो मधुबन में आता है उसके मन में क्या होता है? सानू तेरे मिलन दा चा बाबा, ओ मैनू तेरे मिलन दा चा बाबा, तकड़ी च पाके बाबा मैनू ना तोलवे, तकड़ी च पाके बाबा मैनू ना तोलवे, मैनू ते रख बाबा हिरदे दे कोल वे, ओ मैनू गोदी च अपने बठा बाबा, सानू तेरे मिलन दा चा बाबा, मुरली तेरी दे विच जादूए की वे, मुरली तेरी दे विच जादूए की वे, इस दे बगैर मेरा लगदा ना जीवे, ओ मैनू मुरली तू अपनी सुना बाबा, सानू तेरे मिलन दा चा बाबा, नाम तेरे दे बाबा हो गए दीवाने, नाम तेरे दे बाबा हो गए दीवाने, दुनिया वाले चाहे
मारन ताने मैनू अपना तू जो बना बाबा सानू तेरे मिलन दा चा बाबा नाम तेरे दे बाबा असी हीरे ओए नाम तेरे दे बाबा असी हीरे ओए तू बन के रांझा आ बाबा सानू तेरे मिलन दा चा बाबा सानू तेरे मिलन दा चा बाबा तू बन के परोना आ बाबा मैनू तेरे मिलन दा चा बाबा ओम शांति।